नारद भगवान की वाणी से हम समझेंगे फिर उसमें हमारी अगाध श्रद्धा होगी, रुचि होगी, कोई मैं हूँ ऐसा विकल्पात्मक ज्ञान में पक्का निर्णय हो जाएगा, पक्का कह रहा हूँ सच्चा निर्णय हो जाएगा, सम्यक नहीं। सम्यक निर्णय तो कब होगा, वो समय दर्शन होगा, निर्णय नहीं होगा। लेकिन इस निर्णय में और उस निर्णय में कोई अंतर नहीं है, यदि अंतर होगा तो समय दर्शन होगा ही नहीं। अभी के निर्णय में तो समय दर्शन के बाद के निर्णय में यदि अंतर होगा तो समय दर्शन होगा ही नहीं। इसलिए सच्चे देव का माने परमात्मा का माने सर्वज्ञता का निर्णय होना अत्यंत आवश्यक है। और मुझे सरलता की बात करता हूँ, हम सुबह रोजाना देव साधु की पूजा करते हैं तो देव सत्य देव क्यों कहते हैं, जो वितरागी सर्वज्ञ और हेतु उद्देश्य होता है उसे सच्चा देव कहते हैं। ये तो अपने बालगुरु परमात्मा में कर दिया, सब शास्त्रों में भी दिखाया, सर्वजन साहब का साथ में भी है, समय साहब में भी मिल जाएगा, सब जगह में सच्चे देव सच्चा देव की हम पूजा करते हैं तो उसका स्वरूप तो हमारी समझ में आना चाहिए ना, कि वो सर्वज किसे कहते सर्वज है कौन, वो सर्वज्ञता का निर्णय करना गुरु ज्ञानाधिकार ने पूरे बहुत विस्तार से बताया है। आपको वहां से बताने के बाद में उन्होंने कहा कि ये अनंत ज्ञान जिसका तुम ये स्वरूप बता रहे हो इसकी हमें जरूरत क्या है, हम तो अपने विषय के विशेषज्ञ हो जाए तो हमारा काम हो जाए, सब बातें जानने की हमें जरूरत क्या है। तो उन्होंने कहा कि इसके साथ में नियम से अनंत सुख होता है, असली सुख होता है, तो तुम्हें सुखी तो होना है ना, जहां सुखी तो होना है तो उस प्रकार ही उतार जो अनंत सुख इंद्रिय सुख का स्वरूप बताया। दुनिया में हम जिसे सुख मानते हैं वो वास्तव में सुख नहीं है, और सुख तो वो जो अनंत सुख है और इंद्रिय आनंद जो केवल भगवान को होता है वो ही है। ये बात बताई काल में सुखादि काल में फिर किसी शिष्य ने ऐसा प्रश्न किया कि ठीक है ये आप जो कह रहे हो यही सत्र सुख होगा, लेकिन ये सुख और भी तो होता है दुनिया में, जिसके पीछे सारी दुनिया पागल हो रही है कि तुम्हारा अपनी सुख को तो कोई जानते ही नहीं, नाम तक नहीं सुना, इसके पीछे पागल नहीं हो रहे, इसकी खोज किसी ने आज तक नहीं की, उसे इसकी जरूरत भी नहीं है क्योंकि वो तो नाम भी नहीं सुना, जरूरत कैसे हो, तो वो एक दूसरा सुख होता है ना, वो तो वो कहते हैं वो कैसे मिलता है हमें तो ये तुम्हारी शुद्धों की ओर से तो ये सुख मिलेगा, और वो जो सुख दूसरा सुख है संसार में वो काल से मिलेगा, तो उनका शुभ परिणामों से मिलेगा। हम समझते हैं कि शुभ परिणामाधिकार शुरू किया आचार्य ने तो शुभ परिणाम का स्वरूप बताएंगे, फिर उसका फल बताएंगे, कैसे कैसे प्राप्त करेंगे ये बताएंगे, तो चक्रवर्ती होता है इंद्र होता है ये सब उसके सुख का वैभव बताएंगे और उसका पूरा परिचय कराएंगे। लेकिन उन्हें तो एक पंक्ति की सिक्सटी नाइन नहीं लाया, सिक्सटी नाइन को क्या बोलेंगे उनहत्तर, कोलकाता में कहा देव गुरु की अर्चना दानादि शुभ उपवास आदि में जो उपयोग है ये सब उपयोग है। देव साहेब गुरु की पूजा, दानादि और उपवास आदि, इनमें हमारे चित्त का लगना, इसको सुरोपयोग कहते हैं। पर पहले दाका में एक दाका में ये बात है, हम सब मानते हैं जैसे हम जो पूजा पाठ करते हैं ये सब करते हैं सुरोपयोग है और इससे पुण्य का बन होता है। दूसरी दाका में मान्य सप्तमी दाका में क्या कहा, इनसे ये जीव मरकर कहां जाता है, क्या बताया, सत्तरवीं दाता में लिखा है कि ये मरकर ये जीव त्रेन की गति में, अगर किताब है देखो उसमें लिखा है कि इस मरकर त्रेन की गति, मनुष्य गति और देव गति में जाता है। तीन तीन बताई है लेकिन त्रेन की गति का नाम सबसे पहले, मनुष्य गति और देव गति का नाम बाद में। जब हम भगवान की पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे, वृत करेंगे, उपवास करेंगे तो त्रेन होंगे। हम इसलिए उदार भर कि त्रेन गति क्यों कह रहे, तो जो कह रहे वो धूप में त्रेन होते हैं ना, कितने सुखी होते, कितने सारी बहुत सामग्री उन्हें कल प्रश्न उपलब्ध रहती है, जो जो जिस चार चीज की इच्छा हो वो चीज उन्हें प्राप्त होती है। तो अपन भी देखते हैं बहुत से ग्रंथ कुत्ते बिल्ली अमेरिका में ऐसे रहते हैं, कितने सुख सुविधाओं में रहते हैं, अब हिंदुस्तान में नहीं वो बीमारी आ गई है क्यों, कुत्ते बिल्ली हमें कुछ नहीं देते, किसी काम के नहीं है, हम गाय भैंस रखेंगे तो काम रखेंगे, हमारे उसी घर उसी कमरे में उसी दिक्कत है, क्योंकि हम सो रहे हैं वही अंदर अंदर बिल्कुल एयर कंडीशन में रहती है, क्यों जिससे दूध देती है, दूध पीते हैं हम, उसको कहाँ रखेंगे और इसको कहाँ रखेंगे। लेकिन शास्त्रों में एक मर्यादा है, जहां जीव मरना नहीं चाहे उस गति को हमको शुभ माना है। एक नरक आई रहती है कि जहां जो जीव गया स्थिति समय वहां से निकलना चाहता है, तो तिरंग गति में यह नियम है कि भले ही अभी हमने पढ़ लिया है तिरंग गति बहुत खराब होती है तो हम चाहते हैं कि नहीं जाए, लेकिन यदि पहुंच जाए और वहां कोई हमें निकालने के लिए मारे तो हम जान बचा के भागते हैं, हम वहां से निकलना नहीं चाहते तो उन्हीं रम जाते हैं और तो उसी पर्याय में हमारा बल चले तो अनंत काल तक हम रहना चाहते, कोई कभी एकदम मैं न डाले कर सब तुम्हें मार डाले बोलो तो रखेंगे, इसलिए वो सब मारे। इस बार कोई जाना है अपने मुद्दे की बात तो ये है कि उन्होंने फिर ये कहा इसकी वजह से जो सुख मिलता है वो सुख सुख नहीं है, अभी तक क्षेत्र भी गाता है इंद्रिय सुख सुख नहीं दुख इंद्रिय सुख सुख नहीं दुख है। इस बिंदु से मुझे बात उठानी है, पांच इंद्रियों के द्वारा जो भोगने में आता है जिसे सारी दुनिया सुख माने बैठी है, जिसको जोड़ने के लिए दिनों रात एक किए है और जिसके पास ये भोग सामग्री कुछ ज्यादा हो गई उसको हमें वो भगवान जैसा देखने लगता है, मान देखने लगता है, तो इंद्रिय सुख सुख नहीं है दुख है, कैसे दुख है। व्याख्याओं में तो बहुत सी बातें बताई लेकिन मैं क्षेत्र जाता नहीं बताना चाहता हूं, मैं तो अस्सी भी ज्यादा पढ़ानी है, फिर वो बात मैं नहीं गिराऊंगा, ये तो ये कह रहे हैं कि ये सुख नहीं दुख क्यों है, ये सब जितनी हमें भोग सामग्री प्राप्त हो गई है और हमारे भोगने की ये पांचों इंद्रियां हैं और हमारे पांच इंद्रियों के माध्यम से उन्हें भोगने के भाव हैं, तीन चीजों के तो भोग सामग्री उनको भोगने में समर्थ इंद्रियां और फिर वो भोगने का भाव, इन तीन का सुमेल नहीं हो तो वो सुख भोगने में नहीं आता। भोग सामग्री है और भोगने का भाव नहीं हो सकता है, बड़ी है कीमत नहीं हो सकती। भोगने का भाव है लेकिन शरीर में ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि उनको हम भोग सकें, हरेक इंद्री के विषय को भोगने की एक अलग टाइप की सामर्थ्य होती है। पेट में हलवा कोई पता नहीं, कायम नहीं है, मूंग की दाल का पानी पी करके जिंदगी निकालनी पड़ती है। फिर भी अपने घर में सबका निमंत्रण करते हैं, पतिरो पकवान बनाते बनाते हैं, सबको परोसते हैं, चलाते हैं और खुद वही मूंग की दाल के पानी के साथ में बिना नमक जाओ निकल ठीक करेंगे जिंदगी निकालते हैं। तो वो इंद्रिय नहीं है, समझ इंद्रिय है लोक सामग्री नहीं है। इन तीनों का मिलना अपने आप में बहुत दुर्लभ है, यहां इस बात को भी नहीं कहा है। यहां क्या कहा है गजब की बात, एक अमीर से अमीर व्यक्ति जिसे महान पुण्य का उदय है, भोग सामग्री अथाह मौजूद है, स्मृति जी के लिए सर्वानुकूलता से युक्त सुंदर स्वस्थ भावों से अपने अनुकूल ऐसी पत्नी मौजूद है, खाने के लिए जो सामग्री चाहे वो सामग्री मौजूद है, हमने ना पांच इंद्रियों के लिए लगा दो सब उपलब्ध है और पांच इंद्रियां भी पूरी तरह भोगने में समर्थ है और भोगने का भाव भी है, अब तो ठीक हो गया ना हम सब। अब ये कहते हैं वो आदमी और एक बिल्कुल गरीब है, सरकारी गरीब की सामरी कतार बीमारियां जिसको है ऐसी एक उसको पत्नी है, इसके कारण टूटी सूटी रोटी घास जैसी रोटी से उसे पेट भरना पड़ता है, ऐसी बाकी तीन इंद्रियों से और लगा लेना ऐसी उसकी उपलब्धता है और उसे भोगने का भाव भी है तो इंद्रियां भी भोगने में समर्थ है। अब कोई भी इंद्री के भोग का जो सुख है वो उसकी तीव्र भूख लगे बिना खाने का मजा नहीं है, बढ़िया से बढ़िया पकवान रखे हैं और भूख नहीं जाकर समझ लो। अब जब के भूख लगे क्यों और बिल्कुल मन के अनुकूल सामग्री उपलब्ध हो फिर कहते नहीं ना पड़ो, ग्यारह बजे खुलेगा तब तक मैं प्रॉब्लम सुनना पड़ेगा, 11 बजे भोजनालय चालू हो भूख तो 8 बजे से लेकिन बिल्कुल 3 घंटे होगा वो उपलब्ध आप सुखी होंगे कि दुखी होंगे, कोई 3 घंटे आपके कैसे यदि आप 3 घंटे लेने जाएंगे लेने जाएंगे लेकिन 3 घंटे बाद जो मेरे मन का खाना मिलेगा उसमें जो मजा आएगा क्यों बस सारा जिंदगी भर का वसूल हो जाएगा क्यों, वो कहते हैं 3 घंटे जो दुख का काल है वो दुख का काल उस गरीब को अमीर को सबको एक साई दुख है, तुम्हारा सबको तीव्र भूख है और खाने की इच्छा है और जो भी उसके भोजन उपलब्ध है वो गरीब भी अपना भोजन खाता है ना तो उसे भी मजा आता है, ऐसा नहीं है वो कहते पेट भर लेता है,
सुख सुख कहता है ना, उसमें भी मजा आता है
ना। अब वो अरबपति वो गरीब वो सुंदर से सुंदर पत्नी वाला और वो काली करोगी गुरु पत्नी वाला उनको भी एक दूसरे से मिलने की उतनी ही तीव्र आकांक्षा है जितनी उस अरबपति को है उतनी उसको। और दोनों को जब तक वो नहीं मिली, जब मिल जाएंगे तब सुखी हो जाएंगे, उसकी बात में बात कर बात में कर अभी तो मंदिर में हो जाएंगे, खाना मिल गया तब नहीं मिलेगी तो सुखी हो जाएंगी। क्यों? लेकिन जब तक नहीं मिली तब तक तो दुख है ना। दोनों में क्या अंतर है? उस अरबपति और उस गरीब उस दोनों के पांच इंद्रियों के विषयों का जो सुख है ना, वो स्पर्श इंद्रिय का भोग, प्रश्न इंद्रिय का भोग, ज्ञान कर्ण इंद्रिय का भोग, ये सुख है ना पांच इंद्रियों के। तो इनकी तरफ जितनी ज्यादा भूख हो, जितनी उतनी ज्यादा खाने का मजा आता ना कहते हैं, तो वो तरफ है और तरफ तीनों की दोनों की एक ही है। एक ऐसा ही निकाल है उनकी तड़प एक सी है, इससे सिद्ध हुआ कि वो पांच इंद्रियों की भोग वाले जीव चाहे वो अनुकूल सामग्री व पुण्य के उदय वाले हों और चाहे वे पाप के उदय वाले हों। हम क्या समझते हैं कि पुण्य के उदय से भोग सामग्री मिलती है तो पाप के उदय से नहीं मिलती है? ऐसा नहीं है। पुण्य के उदय से अच्छी मिलती है, पाप के उदय से खराब मिलती है, दोनों से मिलती ही मिलती है। वो जाने का और कारण तो पुण्य पाप का खलास होना है, समझिए ना। तो अब दोनों के पाप का उदय जिससे है वो, और पुण्य का उदय जिससे है वो, उन दोनों का वो जो दुख है, वो तीन घंटे का जो वियोग का दुख है, वो दुख एक सा है। यदि वो कहते पांच इंद्रिय विषयों के प्रति वो एक ही गृद्धता है, एक ही आकुलता है, एक ही जल्दी है कि जल्दी 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 मिले, तो वो दुख दोनों का एक सा है। इससे सिद्ध होता है कि पुण्य के उदय वाले भी दुखी हैं और पाप के उदय वाले भी। तो दोनों ही दुखी हैं तो पुण्य और पाप में क्या अंतर होगा? जब वो दोनों दुखी हैं, सुखी नहीं है कोई, तो दोनों में क्या अंतर आ गया? कोई अंतर नहीं रहा। तो जिस भाव से ये दोनों भाव बनते हैं, शुभ भाव से पुण्य बनता है और अशुभ भाव से पाप बनता है, तो जो पुण्य और पाप में दोनों अंतर नहीं रहा तो शुभ और अशुभ भाव में भी अंतर नहीं रहा। इसलिए भाव दो प्रकार का होता ही नहीं, एक ही प्रकार का होता है और उसका नाम है अशुद्ध भाव। शुद्ध वो अलग है, भाव दो प्रकार के शुद्ध और अशुद्ध, और अशुद्ध भाव के हमने दो भेद कर दिए, कौन कौन? शुभ और अशुद्ध। पहले शुभ अशुभ में कोई अंतर नहीं है, पुण्य और पाप में कोई अंतर नहीं है, समझे ना। शुभ सुख में कोई अंतर नहीं है, कि अमीर के गरीब की सब पांच इंद्रियों के विषय में भोगने में एक सा दुख दोनों को है। और जैसे सुख कहते हो सुख तो है ही नहीं, जब खाएंगे फिर तो मजा आ जाएगा, फिर तो सुख मिलेगा ना। तो तीन घंटे जब तक इंतजार किया तब तक तो दुख, हमने मान लिया थी बात, और एक सा दुख, लेकिन खाएंगे तो उसे मजा आएगा, और बढ़िया फर्ज खाना, इसे मजा नहीं आएगा। जैसे भैया खाने में भी खाते वक्त पंखा काय को चाहिए, ए सी काय को चाहिए, और कितनी कितनी है, कभी कहते
તત્કાલ નમકીન ગુજરાત પર નમકીન ને શું ખાતો
અચ્છા
લગા ને એ જો અચ્છા લગા તો એ કોણ ખાવ કરી મેં મોં ઠીક કર્યું એ મતલબ મોં ખરાબ હો ગયા બદલતે હો મને કિસી ભી ચીજ મેં તમે સંતોષ મને સુખ નહીં ક્યાંય પહેલે સમય મેં દૂસરી ચીજ ખાને કી ઈચ્છા ક્યાં હોય જો બદલ બદલ કે જો ખાતે હૈમે એ સિદ્ધ હોતા હૈ તો હવે એક ભી ચીજ મેં સુખ નહીં ખાલી બેઠા ફિર ભરને મેં મજા આ ગયા તો ઘર કે ખાલી કરને કી કરતી ભરિયા સબ તો આનંદ હૈ ના ક્યાં માને હમ વિચાર કરેંગે એક ભી સમય દિલીપ ભાઈ તો ગીત મેં કહી ભી એસા નહીં મિલેગા જિસમે હમે નિરાકુલતા હો નિરાકુલતા કા નામ હૈ ના શુભ શુભ કા સ્વરૂપ નિરાકુલતા હૈ ને નિરાકુલતા તો રંજમાન તો હોતી નહીં સદનિયો કે વિષય તો અપને આપ લગાના બહુ બઢિયા ચિત્ર દેખ રહે હૈ ઓર દેખતે દેખતે થક જાતે આખી ચિંતા ખરાબ હો જાતી ખરાબ હોને લગતી હૈ નિરંતર એક પહેલા શો દેખો દૂસરા શો દેખો ક્યોં ખુશી કે નહીં હોતી કદી પાંચ ઇન્દ્રિયો મેં ઉસી વિષય કી જિસે જરા ભી અધિકતા હો જાય એક રોટી જ્યાદા ખાને મેં આ જાય તો જ્યાદા સબ ભગવાન સમજના વાસ્તવ મેં દુઃખ કો અંતર તો રહે અંત મેં ભી દુઃખ આદિ મેં ભી દુઃખ ઓર મધ્ય મેં ભી દુઃખ પતા હી નહીં ચલતા કે સુખ તુમ્હે કબ મિલા ઉસકે લીએ દુનિયા પાગલ હો રહી હૈ જોડ રહી હૈ કિતના હી મિલતા હૈ તો સુખ કૈસા તો રહી હૈ બહુત ખર દિખતા હૈ નિશા કા કહાં મેં ગરીબ આદમી પડા હૈ ઓર કહાં ને કાલ મોટા દાદી દોડને વાળે દુનિયા સચી વાત કરતે હો હમે બહુત સ્પષ્ટ દિખતા હૈ ઓર ઇસકા પ્રયોગ મેં દિખતા હૈ તો હમ તુમ્હે સમજા રહે કે નહીં હૈ હમ તુમ્હારે કહેને સે નહીં માનેંગે કોણ સમજા ભરત ભગવાન આયેંગે તુમ્હે દુનિયા નહીં લીજિએ તબ દેવી આ જાએંગે તો તુમ માન લો કે દેવલી આ ગઈ ગયો પુર ભગવાન કે સમોસર મેં ભી ગયા થા વહાં ભી તુમને સમજાયા થા ઓર વહાં સે ભી લોટ કે મેં લેકર રહેતા આ ગયા તો કેસે માનો મેં કે જબ હમે પ્રાપ્ત હો જાતી તબ હમ ચક્રવર્તી હો જાએંગે હમ ઇતને હો જાએંગે ક્યોં ફિર હમ દેખેંગે કે ચક્રવર્તી કો સુખ હૈ કે નહીં હૈ બિચારે ભોગ ભોગ કે જીએંગે હમ ઇન્દ્ર કે ભોગ ભોગને મન કે દેખેંગે હમ વૈસે હમને કોઈ કસર નહીં છોડી ચાર ચાર રૂપિયા દે ઇન્દ્ર બન ગયે 25-25 લાખ રૂપિયા દે અકેલે પૂજા કરવા કે લીએ મને તો ભોગ ભોગને કે લીએ મિલ મને ભોગ ભોગને મેં પ્રતિજી મેં ઓર બ્રહ્મચર્ય જરા દિયા ખાના પીના બંધ કર દિયા ચાય પાણી પર પ્રતિબંધ લગા દિયા તો જે આપ તો મેં પિરાને કરતે પિરામ કરતે કે કહેવાને કે મેં ये चीजें नहीं करोगे ભોગ ભોગને કે લીએ થોડી હિંમત કરે કે હમે બન લેંગે બન જાએંગે તબ હમ ફિર દેખેંગે તો ફિર હમે સુખ દિખાઈ નહીં દેગા તો ફિર હમ આપકી વાત માનેંગે દેખો ભાઈ કુછ ચીજેં એસી હોતી હૈ કે દૂસરે કે અનુભવ સે હી સમજ લેના ચાહિએ હર ચીજ સ્વયં થોડી દેર અનુભવ કે ફિર દેખી જાતી હૈ અપને બાપ દાદા ને કહા થા કે હકી ગલ હોતી હૈ હાથ નહીં રખના નહીં મેરે જલ જાએંગે તો અપને માન લિયા નહીં તો જલ કે બચેગા પિતા દૃષ્ટ નહીં જીવતે તો હાથ જગા જગા કે જીતતે હમને બહુ સી ચીજે બિના અનુભવ કિએ સીખી જતી સીખી જબ ગ્રહ જાતા કે જિસકા આજ તક ઈગો સ્વાદ કા પતા નહીં
ஆன்மா மாத்தான்தே உண்டு. ஏதோ ஜவாந்தரோ சூட்டை ஒரு ஆதி மர் ஜாத்தா சுவாத கேசா ஹே வோ பதா நீ தேதா பிரயோக கியே டாக்டரோ நே யஹாம் பர் சப் லிக் தியா மீதா கர்வா கசாரா ஹே சப் ஹாத்மா பென்சில் தே தி யஹாம் ஜவாந்த பே உதே சுஹான் வோ காம் பதா பர் சுசான் லகா தேனா லிக் தோ தூ மார் கை நீ லேகின் புஷ்பர் நிசான் லகா தேனா கா லேகின் கோயி ஆர்மி நிசான் நீ லகா பாயா உஸ் ஜெஹர் கா ஸ்வாத் ஆஜ் தக் பதா நீ கரா तो उसे भी चक्के देखेगा। पांच इंद्रिय का विषय चक्रवर्ती का सुख तू स्वयं चक्के देखेगा। अरे चक्रवर्ती को देख लो ना, इंद्रों को देख लो ना कि वे कैसे सुखी हैं या दुखी हैं। हमें तो बहुत सुखी दिखते हैं, बहुत सुखी दिखते हैं, बिल्कुल सुखी दिखते हैं। ये सर पांच इंद्रियों के विषयों से इतने दुखी हैं, पीड़ित रहते हैं कि उन्हें सह नहीं सकते हैं। असहनीय वेदना होती है कि तुम्हें कैसे पता है वेदना होती है उन्हें कि रमणी के विषयों में रमें। ये पांच रमणी के विषय हैं जिन्हें हम रमणी कहते हैं ना, कि महान गंदे विषय जो हैं उनमें वो रमन करते हैं। इस बात का प्रतीक है कि उन्हें भयंकर वेदना है। पांच उदाहरण दिए हैं आचार्य ने, मैं पांचों में आपको नहीं समझाऊंगा, सब एक दूंगा। एक जगह लिखा है यदि उसके कान में भयंकर दर्द नहीं होता तो इसके बकरे की पेशाब कान में डरवाने को राजी नहीं होता। आयुर्वेद में ऐसा कहा होगा कि कान में भयंकर दर्द हो तो बकरे की पेशाब डालो हो तो वो दर्द ठीक हो जाएगा। कोई प्रयोग करके देखना मैं क्यों ना हुए घर मेरे को तुम भरा भरा कहो। जो आचार्य ने लिखा है तो मैंने आपको बता दिया है, मेरे कोई मैं उसकी गारंटी वाला आदमी नहीं हूं, पर आचार्य महाराज भी कहते हैं हम थोड़ी बैठ हैं, हमने भी लिखा जाना है। वैद्य लोग कहते हैं तो ऐसा होता है, करना है ना। तो वो कहते हैं कि भयंकर पीड़ा नहीं होती कान में तो बकरे की पेशाब डलवाने को कोई राजी क्यों होगा, क्योंकि वो कान में पेशाब डालोगे तो गले में चली जाएगी, पेट में जाएगी, ना सब में आ जाती। यहां तो मामला सब एक ही है ना। और शुद्ध पानी पीने का हाथ करा कि पानी की कथा नहीं महराया बहने अपवित्र चीज को अपने गले में जाने नहीं, क्यों देव बनने की बाल में देना बहन के अंदर से ना दे देर मत करो। तुमने लिखा कि भयंकर वेदना नहीं होती तो इतनी गंदी चीज को अपने कान में डलवाने को राजी नहीं होता। जैसे पांच इंद्रियों के लगाओ हर विषय की इतनी भयंकर वेदना है कि ऐसे गंदे गंदे कार्य करने के लिए ये लोग राजी होते हैं। कृष्ण इंद्री का रसना इंद्री का अवरसना इंद्री का लगाओ ना, जैसे जैसे घृणित पदार्थ वो जो शहद है और क्या है मधुमक्खियों का कोई मल है समझ लो, जो कुछ भी कह लो, कितनी कितनी गंदी चीज राग उन्होंने निकाल निकाल के गंदी थी है और उसको हमें खानी पड़ती है। ये सारी जो चीजें हैं वो अत्यंत गंदी अनंत चीज दूसरे पैदा हो रहा है और मल है ऐसे अनंत पदार्थ। तो कहते हैं कि पांचों इंद्रियों के विषय के इन विषयों में वे रमण करते हैं, इससे मालूम पड़ता है कि वे दुखी है। क्योंकि गीता की पंक्ति में लिखा है, दुख के बिना विश्व विषय में व्यापार हो सकता नहीं। तो सत्य गाथा की गीता की पंक्ति है ना। बोलो बोलो।
पंचेन्द्रिय विषयों में रतिये हैं स्वाभाविक दुखी जन, दुख के बिना विश्व विषय में व्यापार हो सकता नहीं।
ये पांच इंद्रियों के विषयों में जो भी व्यापार कर रहे हैं, कितना सुख है, सुख का नाम कैसे कहते हैं पत्नियों से। तो आप क्या है उनसे उसका छियानवे हजार में भाग सुख तो होगा ना, एक पत्नी में तो। पर जो भी आप भोगते हो जो सुख है, उससे छियानवे गुना सुख चक्रवर्ती को लगाओ तो तुम्हें अंदाजा लगे। यदि तुम दुख महसूस करते हो तो उससे उतना ज्यादा दुख हो गया ना, उसे
छियानवे हजार गुना दुख
होगा। छियानवे हजार गुना दुख होगा या नहीं होगा? कहते हैं गुरुदेव फरमाते थे, चक्रवर्ती की पदनामी मासिक धर्म से नहीं होती और उसके बाल बच्चे नहीं होते। क्यों नहीं होते? कि यदि वो मासिक धर्म से होगी और उसके बाल बच्चे होंगे तो चक्रवर्ती के विषय में बाधा पड़ेगी और चक्रवर्ती को निर्वाण विषय चाहिए। क्या कितना सुखी है अंदाज लगाओ। थोड़ी बात और कहूँ, आज ना भगवान, अभी तो भगवान है ना, वैराग्य तो सबसे बड़े वैराग्य होने कैसे हुआ था? दूसरी नाम है ना, नाचते नाचते मरी थी और दूसरी आई थी, इसीलिए हुआ था ना। मेरे दो तीन प्रश्न हैं, मैं पूछता हूँ कि नीला नीला का नृत्य देखने क्यों गए थे? जिंदा नृत्य देखने गए थे उनकी क्या उम्र, उनकी कुल उम्र कितनी थी? मन 84 लाख उम्र। अरे पूरा पूरा अभी समझ में नहीं आता। तो अपन तो ऐसा करो ना, कर्म के हिसाब से एक बरस माने एक पूरा, ठीक है? तो मैंने 84 लाख पूरा माने 84 बरस। अब 84 बरस अभी समझ में आता है, क्योंकि हमें लगभग आज आदमी उतने ही जीता है, इतना ही तो है ना। तो जब वे वीरांगना का नृत्य देख रहे थे तब वे कितनी क्या उम्र थी उनकी मालूम है? 83 लाख पूरब की माने 83 बरस की, कुल उम्र 84 बरस, और वे 83 बरस के हो गए जवान के बूढ़े के बच्चे। क्यों? वो उम्र थी और वो काम नीलांजना का नृत्य देखना एक दिन का काम नहीं था, ये देवी का प्रोग्राम था। उनके मनोरंजन की व्यवस्था देवी ऐसी होती थी और सौंदर्यंजन की व्यवस्था करता था, सारी समय मिलती उन्हें सब कपड़े लगते सब चीजें बोल जाता है, वो सारी देवना लाया वो बचा या सोना, ऐसी व्यवस्था 83 बरस की उम्र में। क्यों हमें ये फिल्म आए कौन सी टीवी पर, वो जो रामायण आए पहले रामायण थे टीवी पर, रामायण देखने जाए तो तुम पंडित मानने को हमें तैयार नहीं, और उन्हें भगवान मानने को तैयार। जब 83 वर्ष की उम्र में साक्षात नीलांजना का नृत्य देखने जाना रोजाना, और ऐसी हालत कि इंद्र को चिंता हो गई कि ये तो बैठा के लेते ही नहीं है, कब लेंगे? 84 वर्ष में 83 तो निकल गए, एक वर्ष रह गया, तो उनको षडयंत्र करना पड़ा, उनको वैराग्य दिलाने के लिए
जो अपने गुरु हैं, अपने तीर्थंकर कितने महान हैं, जिनकी जन्म से सेवा कर रहा है, क्यों जन्म के होते दरवाजे पे नाचा था और आज तक नाच रहा है, उनके ही साथ धोखा धड़ी, क्यों उनको ही बैराज कराने के लिए? तो वीर आदिनाथ भगवान क्या सोचना लगे और सोचते कि जिनको तो हम कितने दुखी हैं कि हमारे दुख दूर करने के लिए इतनी इतनी भोग सामग्री जुटानी पड़ती है, कितने इतने लोग लग रहे, और उसकी को सोचो कि जो हमारे मनोरंजन करने के लिए आए उसे पता था कि आज मैं मरने वाली हूँ, कहा नहीं था कि वो मरा मरा मजा आती है ना, और स्टोर मित्र ने भेजा था उसे पता था या नहीं, मैं स्टोर संबंध के भेजा था, उन्हें भी पता था कितनी हाय चुकी है, हमें पता चल जाए हम छह महीना में मरेंगे तो कब से हम कोई काम करेंगे, क्यों प्रजो भी बदल कोई कोई नहीं कहेगा, सब भाई हमको सब आप तो आराम करो, आप तो आराम करो, बैठो सब हमारी सेवा के लिए तैयार हो जाएंगे, ऐसा जो ना उसके साथ में होना चाहिए था, लेकिन आज तो नहीं जाऊंगी कम से कम, आज तो मुझे बदना है, एक आज तक मेरे को छुट्टी मिलनी चाहिए ना, कहना ही जाना पड़ेगा, बनना है मांगना, इतना सुख कैसे मांगना उनको, सुख तो बहुत पड़े होंगे, कभी दुख भी तो देखो उसके, इतनी हार ड्यूटी कि आज मरते नाचते नाचते ही मर जाना है तो भी जाना है, जगत का ये स्वार्थी पन देखकर अंसर देव को बैराग होंगे, इसलिए वो कहते हैं कि दुख के बिना इस विषय में व्यापार हो सकता नहीं, पांच इंद्रियों के विषयों में हमारा व्यापार हो रहा है, इसका मतलब हम दुखी हैं, तो जब कहते दुखी चक्रवर्ती भी दुखी क्यों, तो ये पुण्य के उदय वाले भी दुखी और पाप के उदय वाले भी दुखी, तो छोटे चक्रवर्तियों में चाहे वो सबसे परेशान करेंगे, अपने अपने लिए किसी भी जिताने को तुम सबसे बढ़िया शक्ति समझते हो उसके पास चल, एक आध दिन तो सब भैया अपना दिखाएगा, छात्र बार दिखाएगा, गाड़ी में घुमाएगा, छुट्टिया लगा कर देगा, और फिर भी दो चार दिन में ही उसकी तकलीफ बताने लगेगा, क्या करने का आपन सच्ची घटना बताता, मेरे सेठी थे, मेरे मूसा भी लगते थे, अब उनका स्वर्गवास हो गया, नाम लेने को कोई फायदा नहीं है, तो वे कहते थे पहले कि आप अच्छे हमें कितने जन्म शर्म से इनकम से कितना इंस्पेक्टर थे परेशानी हो परेशानी, मैंने वो प्रधानमंत्री अरबपति सेठ थे, बहुत बड़ा बिजनेस था समझे ना, और हम वहां का रन सब कुछ करते थे, हाँ हमसे अच्छे बहुत आ गए, वे बहुत दुखी हैं, वे हमें बता देते आप जरा दोस्ती तो करो इन लोगों बच्चों से, जिससे करोगे वो जो हम लोगों को बताएगा, गिरा गिरा करके क्यों बोला सकेंगे, तो अंदर से बहुत गहरे में दुख अनुभव करते हैं, गिनाते हैं, मैं उनसे कहता था हमारे नौसा जी लगते थे कि हमारे जी तो शिक्षा लेकर है, आप मेरी गलती नौकरी कर दो और आपकी गलती तो मुझे बता दो, आपको कौन रोकता है, मैं चाहूं तुम्हारी गलती गलती में नहीं रह सकता, तुम मेरी जैसी नौकरी तो कर सकते हो, वस्तु स्थिति यह है कि हम उसको बहुत गहराई से अपने को दुखी महसूस भी करते जाते हैं और कहते भी जाते हैं और छोड़ते भी नहीं है, जहां से लेके वहां तक चलती हुई हालत है, दुख के बिना इस विषय में
क्या पार हो सकता नहीं।
ये अंतिम नाम लगा रहा था फिर 40 पुण्य के उदय वाले हों या पाप के उदय वाले हों, 5 दुनियों के विषयों के लोग भी सबके सब हैं
क्या।
और जिसको जो चीज अच्छी लगती है उसके पीछे भले जा रहे हैं, सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, और जब तक वो नहीं मिलती है तब तक दुख मिलता है तो दुख, और उसके बाद में दुख, ऐसा दुख कभी रंग दो रही आदि में मध्य में और अंत में तीनों में दुख ही दुख इसकी है।
तो अब वो पुण्यों पाप कर में कुछ फर्क नहीं रहा ना,
क्योंकि पुण्य फल में नहीं मिले तो इनका जो कारण सुबह स्वभाव है उनमें फल में अंतर नहीं रहा। तो ये आचार्य आपको कहाँ ले जाना चाहते हैं, ये कहते कहाँ ले जाना चाहते हैं,
ये वहां ले जाना चाहते हैं कि भाई पुण्य और पाप में कोई फर्क नहीं है। तुम एक को अच्छा और एक को बुरा मान रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। और निष्कर्ष के रूप में वो कहते हैं क्षेत्र में हमारा प्रत्यावरण है
ये सुख सुख नहीं दुखे है, दिल में बाधा सहित बनने का कारण दुख चिंत।
अभी इसके बाद कहते हैं आया समझ में,
तुझे बोले समझाई से नहीं,
क्या समझ में आया कि नहीं।
पुण्य पाप में अंतर नहीं है, जो न माने बात ये संसार सागर में भ्रमे, मद मोह से आच्छन्न वे।
जो आदमी ये नहीं माने आप तो पुण्य पाप में कोई अंतर नहीं है। हमने यही तो समझाया है, अंतर को कहते हैं कि पुण्य पाप में अंतर नहीं, तुम पुण्य के पीछे भाग रहे हो पाप से डर रहे हो, ये दोनों ही एक से हैं,
है ना। हमने ये बात समझाने के लिए यही बातें करे। अब तुमने ये बात मानी क्या नहीं मानी,
क्या
पुण्य पाप में अंतर नहीं है, जो न माने बात है। इस बात को जो व्यक्ति नहीं मानेगा संसार सागर में भ्रमे, वो संसार सागर में अनंत काल में घूमेगा। मन मोह से आच्छन्न हो वो जीव अनंत काल तक इस संसार समुद्र में घूमेंगे।
कितना सा अपराध, कितना सा
कि पुण्य और पाप में अंतर नहीं है, सिर्फ हमें बीमा है। कैसी बात करते हो, पुण्य के होने वाले कितने सार बार में रहते हैं, पाप लेने वाले कितने दूर होते हैं,
कैसे मानने लगेगा
कि नहीं मानोगे तो अनंत काल तक संसार में घूमना अच्छा। अब कहते हैं कि मानो मान लिया,
क्योंकि कभी तो आगे बढ़ना है तो हमको ये मानना पड़ेगा इन्होंने मान लिया भैया का छोड़ इस बात को, और कितनी ही जरूरत,
क्योंकि जब तक हम नहीं मानेंगे कि तुमने मानी तो हम घिसते ही रहेंगे,
फिर और उदाहरण लाएंगे और उदाहरण लाएंगे और लाएंगे, समझाते ही रहेंगे कि नहीं समझाते रहेंगे कि हमने मान लिया कि तुमने
सत्ता पापा रंग
विदितार्थ जन पर
पापा रंग को छोड़
सब छोड़ पापा रंग शुभ चारित्र में उद्यत रहे पर नहीं छोड़े मोह तो शोधात्मा को ना लगे।
कच्चा पापा रंगम मुझे मेरी किताब सुना रहा था, तुम कह रहे हो कभी क्यों मनाए, मैं अपनी किताब अच्छी लगती है ऐसा नहीं है, ये छंद है ये सब इसमें है, क्योंकि तुम्हें नहीं दूसरी किताब में। अब मुझे आपको पढ़ाने बताने रंगने के कैसे बताऊं,
सुने ना, इसलिए मुझे ये चाहिए। पर इसकी वजह एक एक मेरे परिचित है कि हमें ऐसा लगा नहीं घर है नहीं घर है, तो मैं ऐसे एक मिनट में देख के खोल के देख सकता हूँ और उसका मेरा परिचय नहीं कैसे बना के ना ये बात नहीं जानूंगा। मैं घर पर भी सौ रुपया करता हूँ कई घंटा पढ़ता हूँ तब एक घंटा पढ़ाता हूँ, असल नहीं है, पुराने ज्ञान के भरोसे नहीं रहता हूँ।
क्या कह रहे हैं, चक्का पापारंभा, पापारंभ सब छोड़ दिया और शुभारंभ में उद्यत है, अनोश रोगियों में आ गया, सब तुम कह रहे सुभा 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 भी लग रहे हैं। अब उस आदमी ने सारे पाप छोड़ दिए, हिंसा दूध चोरी खुशी पैग अभ्य भक्षण जो भी जिले को पाप समझते हो और सब विश्वास ही संयम सब त्याग सब वो सारे उसमें हो गया, वो कोई कमी नहीं गई। अब कहते हैं इतना कर ले वे फिर भी फिर तो काम हो जाएगा ना, सारे पाप छोड़ दे देने वाली सारे सुभाव में तैयार है तो काम हो जाएगा कि नहीं, छोड़ वो है तो संसार शुद्धात्मा को नाल है।
यदि वो दर्शन मोह को नहीं छोड़ेगा यानी मिथ्या तो वो नहीं छोड़ेगा तो शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, नहीं होगी और नहीं होगी।
यानी कितना ही पुण्य करे और कितना ही पाप नहीं करे ये लोग धर्म मानते हो, लेकिन हमारा असली काम तो शुद्धात्मा को प्राप्त करना है, वो तुम्हें शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, नहीं होगी और नहीं।
क्यों क्यों नहीं होगी, यदि नहीं छोड़े बोले तो
मन मिथ्या को नहीं छोड़ेगा तो मिथ्या को छोड़ देगा तो हो जाए
तो वो कोई उस शुभ भाव से नहीं होगी, अशुभ भाव के त्यागने से नहीं होगी,
वो तो उस शुद्धात्मा को जानने से उसे होगी, मोह को छोड़ने से।
तो अब हमारी समझ में आ गया कि मोह को छोड़ना जरूरी है, अभी तक हम कहां थे कि अशुभ भाव छोड़ना जरूरी है और शुभ भाव करना जरूरी है, पाप छोड़ना जरूरी है और पुण्य करना जरूरी है, इस संसार के दुख से बचना जरूरी है और सुख को भोगना जरूरी है। अभी तक हम ध्यान करेंगे ऐसे में कभी भी सारे प्रभु सारे प्रभु वैसे शाम तक हम सब इसी में कर रहे थे। देखो अपने लोग यहाँ इतने लगभग एक ही व्यक्ति वाले हैं, एक ही प्रवृत्ति वाले हैं, एक सा खान पान है, अभक्त भक्षण नहीं है, भक्त भक्षण है, मतलब लगभग समान आचरण है ना। अब समान आचरण होने पर भी प्रत्येक व्यक्ति का पाप में प्रवृत्ति नहीं है मोटी मोटी, क्योंकि किसी चीज की हत्या कर रहे हैं हम कोई जैसे भी बच्चे भी वो ऐसी हमारी प्रवृत्ति नहीं है, ऐसा झूठ बोले कि जिससे हमें जेल में जाना पड़े ऐसी प्रवृत्ति नहीं है, कैसी चोरी करें कैसी दूर माँ है वो ऐसे देखें हर हर तरीके छोड़ने जाना ऐसी हमारी प्रवृत्ति नहीं है, फिर भी हमें पुण्य पाप के उदय में अंतर तो बहुत है ना। एक आदमी के पास अपार भोग सामग्री है, अपने गाँव में जो है ना उसको अपार कह रहा हूं मैं, हरी चक्रवर्तियों दुवर्तियों में छोड़ दो, कोई कमी नहीं है, मतलब एक गाड़ी चाहिए तो चार गाड़ी खड़ी है, एक मकान चाहिए तो चार मकान है, एक छह बेडरूम का कमरा चाहिए तो बारह बेडरूम का कमरा, मेरा मतलब एक ऐसा भी है और एक ऐसा भी है जो बिल्कुल एक कमरे में दस आदमी बैठे सो रहे हैं, ठंडी निकाल रहे हैं, ठीक है, यहाँ जो अपन बैठे इन्हीं में दोनों तरह के दूर हैं, तो अपन किसी को सुखी किसी को दुखी तो मानते ही है ना, और बराबर जो जो एक कमरे में दस आदमी सो रहे मेरी निरंतर कोशिश में है तो उन्हें भी दस कमरे वाला मिल जाए, दस कमरे वाले हैं ये सौ कमरे के चक्कर में है, मामला। अब मैं ये कह रहा हूँ कि सुखी और दुखी में अंतर है, अगर मान रहे ना कि अंतर है अंतर नहीं, अब ये हमारे लिए कैसे होते
ऐसा कह रहे दोनों में कोई अंतर नहीं, क्योंकि सबको भूख एक सी लगती है। संकोच ऐसा नहीं कि अभी भूख लगी तो फटाफट खाने को मिल जाए, घंटे दो घंटे की देर तो हो ही जाती है, पत्नी छत्ती है बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, अभी बैठो तो सब्जी होता है, नहीं बच्चे बोलिए मेरे कहने का मतलब यह है कि सबको वो कह रहे हैं पांच इंद्रियों के भोग की इच्छा और भोग की सामग्री और उन दोनों का वियोग लगभग एक सा है, इसलिए सभी एक से ही दुखी हैं। सुखी कहना होता सुखी क्या, लेकिन सुखी तो है नहीं सभी, इतना अंतर है और फिर भी कोई अंतर नहीं है अंतर, तो अब क्या करोगे और ज्यादा बड़ा करोगे। अनुमत कर एक एक आदमी सोचो कि पहले उसके पास में बस 1,00,000 रुपया था और आज लाखों में तो पहुंच गया, करोड़ों में ही हो गया, बहुत बहुत हो गया, तो उसमें कितना सुख बढ़ गया। अपने सुन के लोग हैं कि अपने ऐसे लोग हैं कि अपन कम वाले स्थिति में भी रहे, मध्यम वाली स्थिति में भी रहे, अपर में भी आए, तो हुए ही ना। क्यों जब बहुत कम था तब भी हम थे और अब जब से अभी हम कितने ज्यादा सुखी हो गए, अनुभव तो बताओ भाई। जब 1,00,000 रुपये थे तब और आज मान लो 50,00,000 है, जब बहुत ज्यादा समझ जो कि मुझे तो पता नहीं अंदाजा नहीं होता है, अपमान हो जाते हैं 50 करोड़ वाले को पकड़ मेरे कहने का मतलब इतनी सामग्री बढ़ गई तो सुख कितना बड़ा। अभी भोग सामग्री में से घट जाए मतलब एकदम 90% गवर्नमेंट ले जाए और 10% अपने पास छोड़े, तो कल क्या करते हैं, 3 कप से 4 से 2 कप कर लो, 1 रोटी कम कर दो, क्या करें कुछ पहनने उड़ने में कुछ कम कर लोगे, करेगा कोई 90% निकल गया मेरा सुनना, तो भी आपके भोग में 1% का भी अंतर नहीं आया। क्या सुख था जो काम में ही नहीं आ रहा था ऐसा सुख हो गया है, जो काम में आ रहा था वो तो सब हो चुके, लेकिन हमको लगता है सब कुछ ये सब कल्पना रोग की बातें हैं ना।
माने तुम कितना ही कहीं तक चले जाना मिलेगा नहीं, आचार्य कहते अंत में यहाँ आना पड़ेगा कि हमारी समझ में आ गया, क्या आ गया तुम्हारी समझ में, गति नहीं छोड़े मोर तो शुद्धात्मा को नारे तो जरा वो छोड़ने को तैयार है, अब हमें मोर को छोड़ने की विधि बताओ। परिणाम क्यों बदलता शुभ भाव शुभ परिणाम का अधिकार कौन सा है, शुभ परिणाम अधिकार, तो बात क्या किया गई कि कुएं के नाश की विधि बताओ, इतनी महत्वपूर्ण बात इस शुभ परिणाम अधिकार में बता दिया जाते हैं, वो बताते हैं हम फिर बताते हैं कि जो जान दी अरे गुण सोदान दियापान जो अरहंत भगवान को निर्गुण पर्याय से जानता है, जो अपने आत्मा को जानता है, जो अपने आत्मा को जानता है उसका मोह नाश को प्राप्त हो जाता है, ये मोह के नाश करने की विधि है। अवसर क्या अरहंत को निर्गुण पर्याय से जानना है, अपने आत्मा को जान लेगा तो वही नष्ट हो जाएगा, कितने दुख करना पड़ेंगे, कितने उपवास करना पड़ेंगे, कितने दंड लगाना पड़ेंगे, कितनी बैठे
डॉक्टर के पास जाओ, ये मेरे मोटापा कम करना है। तो वो कहेगा इतने दौड़ो, सुबह जाइए घूमने जाओ, इतने दर्द लगाओ, इतने दर्द लगाओ, इतना ही कुछ खाओ, पता क्यों हम तैयार हैं। तैयार कर भगवान को लेना पड़ेगा, लेना कैदा जी का भी पूरा जान रहे हो कदम। अब मैं इसकी पूरी व्याख्या तो कल परसों करूंगा, जब अभी आएगा अपना समय, लेकिन अभी इतनी गहरे हो इतना मुंह के नास्ती विधि है। जो तुमने आज तक कुछ किया वो मुंह के नास्ती विधि नहीं थी, क्योंकि होती तो मुंह का नाश हो गया होता। इससे सिद्ध होता है कि वो विधि नहीं थी, एक विधि है जिसकी चर्चा अपन कर सकते।